एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, एकत्र ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर से स्वागत। आज हम गोता लगा रहे हैं गणित के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली में। एक ऐसी पहेली जो दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को, अब मानेंगे नहीं, 350 साल से भी ज्यादा उलझाए रखा।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं साइमन सिंह की किताब फेर्मा की आखिरी प्रमेय, या जिसे अंग्रेजी में फेर्माट्स एनिग्मा कहते हैं, उसके बारे में।
मैं हूं आपका मेजबान
और मैं हूं आपकी सहमेजबान। और ये कहानी है एक ऐसे गणितीय सवाल की जो मतलब दिखने में एकदम सीधा साधा लगता है, लेकिन जिसका हल ढूंढने में सदियां बीत गईं। आज हम इसी रोमांचक सफर को समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, और ये कहानी ना सिर्फ नंबरों या समीकरणों की नहीं है, ये असल में इंसानी जुनून की है, जिद की, वो हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है, और ज्ञान की उस कभी ना खत्म होने वाली खोज की। सही कहा, ये दिखाती है कि कैसे एक मतलब बेकार सी लगने वाली पहेली भी गणित की दुनिया में क्रांति ला सकती है।
बिल्कुल, और कैसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाने का जो सफर होता है ना, वो खुद मंजिल से ज्यादा अहम हो जाता है कभी कभी।
और इस कहानी को हम तक लाए हैं लेखक साइमन सिंह। उनके बारे में भी जानना काफी दिलचस्प है। वो एक ब्रिटिश लेखक है, विज्ञान पत्रकार हैं, पर उनकी जड़ें विज्ञान में काफी गहरी हैं।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पार्टिकल फिजिक्स में PhD हैं, और वो दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब CERN वहां भी काम कर चुके हैं।
जी हाँ, और यही बात उन्हें खास बनाती है। वो क्या है ना कि विज्ञान और गणित जैसे मुश्किल विषयों को कहानी की तरह बहुत रोचक अंदाज में पेश करते हैं।
हाँ, वो हुनर है उनमें। BBC के लिए भी काम किया उन्होंने, हॉराइजन जैसी सीरीज पर, तो वो एक वैज्ञानिक वाली सटीकता और कहानीकार वाला अंदाज दोनों ले आते हैं।
एकदम सही, और इस खास विषय के लिए तो वो बिल्कुल सही व्यक्ति थे। बात यह है कि ये किताब लिखने से पहले उन्होंने इसी पर BBC के लिए एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाई थी।
अच्छा,
हाँ, तो उस वजह से उन्हें कहानी के जो मुख्य किरदार थे, खासकर एंड्रू वाइल्स जिन्होंने इसे हल किया, उनसे सीधे बात करने का मौका मिला। तो उनके पास अंदर की कहानी थी, है ना दिलचस्प?
अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए अब सीधे किताब के दिल में उतरते हैं। ये किताब है 17वीं सदी के एक फ्रांसीसी गणितज्ञ पियर द फर्मा, उनके एक दावे के बारे में।
हाँ, फर्मा शौकिया गणितज्ञ थे, पर कमाल के थे।
उन्होंने एक पुरानी गणित की किताब के हाशिए पर, मतलब मार्जिन में, एक नोट लिखा, और उस नोट ने गणित की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया।
हाँ, वो मशहूर नोट। पर पहले जरा ये समझें कि पहेली थी क्या। हम सबने स्कूल में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, x² + y² = z².
हाँ हाँ बिल्कुल,
और इसके कई पूर्णांक हल हैं, जैसे 3² + 4² = 5² मतलब 9 + 16 = 25, है ना?
जी
फर्मा ने कहा कि अगर हम इस घात को, मतलब पावर को, 2 से ज्यादा कर दें, जैसे x³ + y³ = z³ या x⁴ + y⁴ = z⁴ या मतलब कोई भी xn + yn = zn, जहां n 2 से बड़ा कोई भी पूर्णांक हो,
अच्छा,
तो फिर इस समीकरण का कोई भी पूर्णांक हल मिलना नामुमकिन है। मतलब x, y, z तीनों शून्य नहीं होने चाहिए और कोई ऐसा हल नहीं मिलेगा।
बाप रे, इतना पक्का दावा?
हाँ, और फिर फर्मा ने हाशिए पे वो लाइन लिख दी जिसने गणितज्ञों की नींदें उड़ा दी।
क्या?
मैंने इसका एक सचमुच अद्भुत प्रमाण खोज लिया है, लेकिन ये मार्जिन इसे लिखने के लिए बहुत संकरा है।
अरे बस इतना?
बस इतना कहकर वो दुनिया से चले गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसी चुनौती जिसने गणितज्ञों की कई पीढ़ियों को प्रेरित भी किया और परेशान भी। सोचिए, 358 साल लग गए उस अद्भुत प्रमाण को दोबारा खोजने में।
350 साल से ज्यादा, कमाल है।
और किताब यही दिखाती है कि ये सिर्फ एक समीकरण को हल करने की कहानी नहीं है, ये जुनून, इसमें प्रतिद्वंद्विता भी थी, निराशा भी थी, अचानक मिली कामयाबी, और मतलब मानवीय भावनाओं से भरी एक जबरदस्त यात्रा है।
हाँ, और इस एक पहेली को सुलझाने की कोशिश में गणित के कई नए और शक्तिशाली क्षेत्रों का जन्म हुआ, ऐसे क्षेत्र जिनकी फर्मा ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी।
बिल्कुल।
तो ये 358 साल का सफर, ये कैसा रहा? जरा इस लंबी और दिलचस्प कहानी के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं।
हाँ, शुरुआत होती है बहुत पहले प्राचीन ग्रीस से, पाइथागोरस से, जिन्होंने संख्याओं और ज्यामिति के बीच वो गहरा रिश्ता खोजा था।
उनकी x² + y² = z² प्रमेय ने तर्क और प्रमाण की नींव रखी, लेकिन फर्मा की चुनौती वो तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी निकली।
फिर आते हैं फर्मा 17वीं सदी में। उन्हें शौकीनों का राजकुमार भी कहते थे। वो जज थे, गणित बस उनका जुनून था। वो अक्सर दूसरों को चुनौती देने के लिए ऐसी प्रमेय बना लेते थे और कहते थे, मेरे पास सबूत है, तुम ढूंढो।
अच्छा, मजाक मजाक में।
हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन ये वाली चुनौती कुछ ज्यादा ही मुश्किल निकली।
सदी दर सदी बड़े बड़े गणितज्ञों ने इस पर हाथ आजमाया। 18वीं सदी में वो महान स्विस गणितज्ञ थे ना, लियोनार्ड यूलर।
हाँ, यूलर बहुत प्रतिभाशाली थे।
उन्होंने काफी मेहनत के बाद सिर्फ n इज इक्वल टू 3 के लिए इसे साबित किया। सिर्फ n इज इक्वल टू 3 के लिए।
सोचिए, उनके संघर्ष से ही पहली बार अंदाजा लगा कि ये पहेली कितनी गहरी और पेचीदा है।
फिर 19वीं सदी में एक असाधारण महिला आई, सोफी जर्मेन।
ओ हाँ, सोफी जर्मेन, कमाल की कहानी है उनकी। उस जमाने में महिलाओं के लिए गणित पढ़ना लगभग नामुमकिन था।
सही बात है।
उन्होंने पुरुषों के नाम से चिट्ठियां लिखकर बड़े गणितज्ञों से संपर्क साधा और इस प्रमेय पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने एक खास तरह की अभाज्य संख्याओं के लिए एक बड़ा रास्ता दिखाया। सोचिए, कितनी मुश्किलों के बावजूद।
वाकई कमाल है। उसी सदी में जर्मनी में अर्नस्ट क्यूमर ने इसे पूरी तरह साबित करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि उन्होंने हल ढूंढ लिया है।
हाँ, पर ऐसा हुआ नहीं। उनके तर्क में एक बारीक मगर बुनियादी खामी निकली।
लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। कहते हैं उस खामी को ठीक करने के चक्कर में कुमेर ने आइडियल नंबर्स का एक बिल्कुल नया गणितीय सिद्धांत बना डाला।
बिल्कुल, ये ऐसा था मानो किसी इमारत की मरम्मत करते हुए एक बिल्कुल नई तरह की वास्तुकला ईजाद कर दी हो।
हाँ, और इस खोज ने आधुनिक बीजगणित यानी एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा की नींव रखी। तो उनकी वो विफलता भी गणित के लिए एक बड़ी सफलता बन गई, है ना?
सही कहा, विफलता भी नए रास्ते खोल देती है। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एक जर्मन उद्योगपति थे, पॉल वोल्फस्केल।
हाँ।
उन्होंने इस प्रमेय को हल करने वाले के लिए एक बड़े इनाम की घोषणा की। आज के हिसाब से तो लाखों डॉलर।
अच्छा, इनाम भी रखा गया?
हाँ, इससे लोगों में दिलचस्पी तो बढ़ी, लेकिन पेशेवर गणितज्ञों के बीच ये समस्या अब एक तरह से लाइलाज मानी जाने लगी थी।
मतलब इस पर वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं।
हाँ, कुछ ऐसा ही माहौल बन गया था।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली मोड़ तो 20वीं सदी के मध्य में आया, और वो भी गणित की एक बिल्कुल अलग दुनिया से।
हाँ, जापान में दो युवा गणितज्ञ थे, युताका तान्यामा और गौरव शिमुरा। उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी और साहसिक अनुमान पेश किया,
जिसे तान्यामा शिमुरा अनुमान कहते हैं।
जी हाँ, तान्यामा शिमुरा कंजेक्चर। ये अनुमान थोड़ा जटिल है, पर इसका सार ये है कि गणित की दो बिल्कुल अलग थलग दिखने वाली शाखाओं, एलिप्टिक कर्व्स।
ये क्या होती है?
ये एक तरह के खास समीकरणों के ग्राफ होते हैं। तो एलिप्टिक कर्व्स और मॉड्यूलर फॉर्म्स।
और मॉड्यूलर फॉर्म्स
वो बहुत ही सममित यानी सिमेट्रिक और जटिल फंक्शन होते हैं। तो इन दोनों के बीच एक गहरा अनपेक्षित रिश्ता बताता था ये अनुमान।
जैसे कि कोई उदाहरण?
इसे ऐसे समझें जैसे किसी ने अचानक दावा किया हो कि मान लीजिए तमिल और जर्मन भाषाएं असल में एक ही गुप्त व्याकरण का पालन करती हैं।
अरे, ये तो बहुत अजीब बात हुई।
हाँ, उस वक्त ज्यादातर गणितज्ञों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई थी। इसे बहुत सट्टा माना जा रहा था।
लेकिन फिर 1980 के दशक में आया कहानी का सबसे नाटकी मोड़। एक गणितज्ञ थे, गेरहार्ड फ्रे।
फ्रे, हाँ।
उन्होंने सुझाव दिया कि अगर फर्मा की आखिरी प्रमेय गलत है, मतलब अगर एक्स एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू जी एन का कोई हल मौजूद है एन टू के लिए।
अच्छा, मान ले के हल है।
तो उस हल से एक बहुत ही अजीब किस्म की एलिप्टिक कर्व बनाई जा सकती है, और ये कर्व इतनी अजीब होगी कि वो शायद तान्यामा शिमुरा अनुमान के व्याकरण में फिट ही नहीं देखेगी।
क्या मतलब?
मतलब अगर फर्मा गलत तो तान्यामा शिमुरा भी गलत।
अरे बाप रे, ये तो बड़ा कनेक्शन निकल आया।
हाँ, फिर ज्याम प्यारे सैर और केन रिबेट जैसे गणितज्ञों ने फ्रे के इस आइडिया को और पुख्ता किया, और 1986 में रिबेट ने ये साबित कर दिया कि फ्रे सही थे।
तो नतीजा क्या निकला?
नतीजा चौंकाने वाला था। अगर तान्यामा शिमुरा अनुमान सच है तो फर्मा की आखिरी प्रमेय भी सच होनी चाहिए। ओह, तो अचानक 350 साल पुरानी पहेली का हल एक आधुनिक जटिल अनुमान को साबित करने पर टिक गया।
बिल्कुल, ये तो कमाल हो गया।
और यही एंट्री होती है एंड्रू वाइल्स की।
हाँ, हीरो की एंट्री।
वाइल्स एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे जो बचपन से ही फर्मा की आखिरी प्रमेय को हल करने का सपना देखते थे। कहते हैं 10 साल की उम्र में उन्हें ये पहेली पता चली थी।
हाँ, और जब उन्होंने रिबेट के काम के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि उनके जीवन का मकसद सामने आ गया है।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अपना सारा दूसरा काम छोड़कर अगले 7 सालों तक पूरी तरह गुप्त रूप से अकेले अपने घर की अटारी में।
7 साल अकेले?
हाँ, 7 साल सिर्फ तानियामा शिमुरा अनुमान को साबित करने में लगा दिए। कहते हैं सिर्फ उनकी पत्नी को पता था कि वो किस चीज पर काम कर रहे हैं।
अविश्वसनीय है। सोचिए कितना मानसिक दबाव और अकेलापन झेला होगा उन्होंने।
वाइल्स ने बाद में इस प्रक्रिया की तुलना एक अंधेरी हवेली में घूमने से की थी। वो कहते हैं आप पहले कमरे में घुसते हैं, सब अंधेरा है, आप फर्नीचर से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आपको अंदाजा होता है कि कौन सी चीज कहाँ है, और फिर महीनों बाद आपको लाइट का स्विच मिलता है, अचानक कमरा रोशन हो जाता है।
वाह।
फिर आप अगले कमरे में जाते हैं और फिर से अंधेरे में। ये रिसर्च का सफर है।
बिल्कुल सही चित्रण है। जून 1993 में कैम्ब्रिज में कॉन्फ्रेंस में वाइल्स ने घोषणा की कि उन्होंने तानियामा शिमुरा अनुमान को साबित कर दिया है, और इस तरह फर्मा की आखिरी प्रमेय भी साबित हो गई।
गणित की दुनिया में तहलका मच गया होगा।
हाँ बिल्कुल, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
अरे और क्या हुआ?
जब उनके 200 पन्नों के प्रमाण की बारीकी से जांच हुई, जो कि गणित में होती है पीयर रिव्यू जिसे कहते हैं।
हाँ, वो जरूरी है।
तो उसमें एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी खामी पाई गई।
ओहो, 7 साल की मेहनत के बाद।
हाँ सोचिए वाइल्स पर क्या बीती होगी। दुनिया भर में ऐलान के बाद पता चले कि कहीं चूक हो गई है।
वो तो लगभग टूट गए होंगे।
बिल्कुल, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एक पूर्व छात्र रिचर्ड टेलर के साथ मिलकर उस खामी को दूर करने के लिए एक और साल तक संघर्ष किया।
फिर से एक और साल?
हाँ, और फिर 19 सितंबर 1994 को अचानक उन्हें वो यूरेका मोमेंट मिला। कहते हैं एक पुराना आइडिया जिसे उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था, वही उस खामी को भरने की चाबी निकला।
क्या बात है।
और इस बार प्रमाण सही था। 358 साल बाद पियरे द फर्मा की चुनौती आखिरकार हल हो गई थी। एंड्रू वाइल्स ने इतिहास रच दिया था।
वाह, क्या सफर था, क्या कहानी है, जबरदस्त
है ना। तो इस पूरी जबरदस्त कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बड़े सबक तो साफ नजर आते हैं।
पहला सबक तो यही है, जो आज बेकार लगता है वो कल दुनिया बदल सकता है। फर्मा की पहेली का कोई सीधा व्यवहारिक इस्तेमाल नहीं था।
हाँ, कोई ऐप नहीं बन रहा था उससे।
बिल्कुल, लेकिन इसे सुलझाने की जिद ने उस गणित को जन्म दिया जो आज इंटरनेट सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी जैसी चीजों की बुनियाद है।
सही कहा। ये याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज अपने आप में महत्वपूर्ण है, भले ही उसका फायदा तुरंत न दिखे।
दूसरा सबक, इंसानी जिद और जुनून की ताकत। यूलर से लेकर सोफी जर्मेन और आखिर में वाइल्स तक, ये हार न मानने की कहानी है।
वाइल्स का 7 साल अकेले लगना और फिर नाकामी के बाद दोबारा उठ खड़े होना, ये कमाल का है।
हाँ, ये हमें अपने लक्ष्यों के लिए लंबे समय तक टिके रहने की प्रेरणा देता है, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई प्रोजेक्ट हो या जिंदगी की कोई और चुनौती। जैसे हमारे यहाँ छात्र सालों तक परीक्षाओं की तैयारी करते, कुछ वैसा ही जज्बा चाहिए होता है।
तीसरा सबक, गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं, नए रास्ते भी खोल सकती हैं। अर्नेस्ट कुमर की असफलता ने गणित की एक पूरी नई शाखा खोल दी।
हाँ, वो आइडियल नंबर्स वाली बात, ये दिखाता है कि असफल होना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर ठोकर एक सबक दे सकती है अगर हम उससे सीखने को तैयार हों।
चौथा सबक, दुनिया जुड़ी हुई है, गणित भी। हल कहाँ से आया? दो बिल्कुल अलग दिखने वाले गणितीय क्षेत्रों को जोड़ने से।
हाँ, वो तानियामा शिमुरा अनुमान वाला पुल, ये हमें सिखाता है कि नए और अनोखे समाधान अक्सर अलग अलग विचारों या क्षेत्रों को मिलाने से मिलते हैं। हमें अपनी सोच का दायरा खुला रखना चाहिए।
बिल्कुल, और इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे फर्मा का वो हाशी वाला नोट। मैंने इसका एक अद्भुत प्रमाण खोज लिया है।
हाँ, वो एक लाइन जिसने 3.5 सदियों तक गणित की दुनिया को बेचैन रखा, ये रहस्य और चुनौती का प्रतीक बन गया।
और एंड्रू वाइल्स का वो हवेली वाला रूपक कितनी खूबसूरती से समझाता है गहरी शोध प्रक्रिया को, अंधेरा, ठोकरें, चीजों को समझना और फिर अचानक रोशनी।
हाँ, ये किसी भी मुश्किल काम में जुटने वाले इंसान के अनुभव से मिलता जुलता है ना, वो भ्रम, वो संघर्ष और फिर अचानक मिलने वाली समझ।
वाह, और तानियामा शिमुरा अनुमान का वो पुल वाला आइडिया, दो अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला पुल, ये गणित की अंदरूनी सुंदरता और एकता को दिखाता है। कैसे गणितज्ञों ने उन छिपे हुए कनेक्शंस को खोज निकाला, अद्भुत।
और आखिर में गणितीय प्रमाण की वो निश्चितता। किताब में एक जगह कहा गया है, एक गणितीय प्रमाण पूर्ण होता है, अनिश्चितता के ब्रह्मांड में निश्चितता का एक टुकड़ा।
वाह, क्या लाइन है।
शायद यही वो चीज है जो गणित को इतना खास बनाती है। एक बार साबित हो गया तो हमेशा के लिए सच। ये स्थायी सत्य बनाने की चाह ही शायद इन शोधकर्ताओं को इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है।
तो फरमा की इस कहानी से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं?
पहली चीज तो गहन काम यानी डीप वर्क का महत्व है। वाइल्स ने 7 साल तक दुनिया से कटकर सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाया।
हाँ, आज की भागदौड़ और भटकाव वाली दुनिया में ये क्षमता बहुत कीमती है।
शायद हमें भी अपने जरूरी कामों के लिए बिना भटके फोकस के साथ समय निकालना सीखना होगा, मोबाइल वगैरह साइड रखकर।
अगर कोई कोशिश नाकाम होती है तो उसे अंत ना मानकर एक जानकारी या डेटा पॉइंट की तरह देखना चाहिए। शायद वो हमें किसी बेहतर रास्ते की तरफ इशारा कर रही हो।
तीसरा, बुनियादी ज्ञान और जिज्ञासा का सम्मान। फर्मा की पहेली सिर्फ जिज्ञासा से शुरू हुई थी, किसी फायदे के लिए नहीं।
बिल्कुल, लेकिन उसी से आज काम आने वाला गणित निकला। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ तुरंत नतीजे देने वाली चीजों के पीछे ना भागें, बल्कि सीखने और खोजने की प्रक्रिया को भी महत्व दें। बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए।
चौथा, अलग अलग क्षेत्रों से सीखने की कला। जैसे गणित के दो अलग क्षेत्र मिलकर हल लाए, वैसे ही जिंदगी में भी नए आइडिया अक्सर अलग अलग स्रोतों या लोगों से मिलते हैं। हमें अपने दायरे से बाहर झांकने की आदत डालनी चाहिए।
और पांचवा, हार के करीब पहुंचकर भी हार ना मानना। वाइल्स के साथ जो हुआ, मंजिल के इतने करीब आकर पता चलना कि रास्ता गलत था, वो किसी को भी तोड़ सकता था।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन उनका वापस लड़ना और जीतना लचीलेपन यानी रेजिलियंस और दृढ़ता का जबरदस्त उदाहरण है।
मेरे लिए इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गणित जैसा अमूर्त विषय इतना मानवीय, इतना नाटकीय कैसे हो सकता है। ये जुनून, सपने, निराशा, जीत, सारे इंसानी जज्बात इसमें भरे पड़े।
सच में
ये दिखाता है कि ज्ञान की कोई भी खोज असल में एक इंसानी कहानी होती है।
और मुझे सबसे ज्यादा ये बात अच्छी लगी कि ये कहानी दिखाती है कि सफर, वो 358 साल की कोशिशें, गलतियां, नई खोजें, खुद मंजिल यानी आखिरी सबूत जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था।
हाँ, गणित इस दौरान कितना आगे बढ़ा।
बिल्कुल, और हाँ, गणित की वो छुपी हुई सुंदरता और एकता जहाँ सब कुछ आखिर में जुड़ जाता है, वो भी कमाल की है।
तो चलिए, आज की इस ज्ञान गोष्ठी को यहीं समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या विज्ञान, कला या किसी और क्षेत्र में भी कोई ऐसी ही लंबे समय से अनसुलझी, सरल से दिखने वाली पहेली या चुनौती है जिसने उस पूरे क्षेत्र को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई हो? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।